संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोंदा, हॉब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है, सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी तथा सर्वव्यापी और अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहु समुदायवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरन राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। विद्वान होसियो ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों से विभाजनीय है और विभाजित किया जाता है। बहुलवाद को समझने के लिए कुछ बहुलवादी विचारकों के कथनों का उल्लेख किया जा सकता है जो निम्न प्रकार है। लिंडसले ने लिखा है कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। वार्कर का मत है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। लॉस्की के शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। गेटल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की है। उसके अनुसार बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं। उनका विचार है कि वे सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः एक संभवतः होता है। वे राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और ना वे अपने अस्तित्व के लिए उसकी इच्छा पर अवलंबित होते हैं। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्रों में सर्वप्रिय हैं। वे इस बात को भी नहीं मानते कि राज्य अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। वे उन सभी समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उनके लिए महान कार्य करते हैं। अतः प्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। उसका सर्वोच्च सत्ता का दावा आज की जटिल दुनिया की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है। बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के अनियंत्रित रूप को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन प्रभुसत्ता संबंधी उनकी यह मान्यता 20वीं सदी की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ना थी। अतः अनियंत्रित प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक अव्यवहारवादी तथा मृत सिद्धांत बन गया और उसके स्थान पर जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं पर आधारित बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ। बहुलवादी विचारधारा के विकास में सहायक तत्व निम्नलिखित रहे हैं। पहला, हीगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया, आदर्शवादी विचारधारा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हुए हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा के नाम से संबोधित किया। हीगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक और आदर्शात्मक संस्था मानता है और राज्य की निरंकुश और असीमित प्रभुसत्ता का उपासक होने के कारण अन्य समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हीगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और इस प्रतिक्रिया का उदय बहुलवाद के रूप में हुआ। बहुलवाद प्रभुसत्ता को असीमित न मानकर सीमित मानता है और राज्य के साथ अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। अतः यह सरलता से कहा जा सकता है कि बहुलवाद के विकास में आदर्शवाद के विरोध का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, राज्य की अयोग्यता। आधुनिक राज्य की अयोग्यता भी बहुलवाद के विकास का एक कारण है। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिकाधिक बल प्राप्त करती जा रही है, लेकिन व्यवहार में अनेक राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने का यह प्रयत्न राज्य की अयोग्यता में परिणित हो जाता है। प्रोफेसर वार्ड के सुंदर शब्दों में इससे केंद्र में पक्षपात या लकवा तथा दुर्वर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग हो जाता है। बहुलवादी विकेंद्रित राज्य के अपने सिद्धांत के आधार पर वर्तमान राज्य की इस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं। तीसरा, मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। बहुलवाद के विकास में जर्मन लेखक ग्रीक तथा ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिगिस आदि विद्वानों के विचारों ने भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया है। गियर्स और मेटलैंड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राजशक्ति एक स्थान पर केंद्रित न थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन विचारकों ने सामाजिक हित में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बल दिया। इस प्रकार फिगिस ने मध्यकालीन चर्च के स्वतंत्र अस्तित्व की बात कहकर इस बात का प्रतिपादन किया कि शक्ति के उपभोक्ता एक नहीं वरन अनेक हो सकते हैं। फिगिस के अनुसार जिस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी व राज्य के हस्तक्षेप से पड़े रही, उसी प्रकार वर्तमान समय में सांस्कृतिक आर्थिक आदि समुदायों की स्थिति है। अतः इन समुदायों को राज्य के समकक्ष स्वीकार करते हुए सामाजिक सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। इस प्रकार मध्यकालीन संघीय समाज व्यवस्था से प्रेरित विचारकों ने बहुलवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा, लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में असंतोष। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभ में प्रतिनिधायत लोकतंत्र के अंतर्गत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन शीघ्र ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष उत्पन्न हुआ और श्रेणी समाजवाद तथा संघवादी विचारकों द्वारा इसके स्थान पर व्यवसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के ये सभी प्रतिपादक, जिनमें GDH कॉल का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, राज्य का उग्र विरोध करने वाले तथा समुदायों की तुलना में राज्य को गौण महत्व प्रदान करने वाले थे। अतः इन विचारकों ने भी बहुलवादी विचारधारा के पोषण में सहायता प्रदान की। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास। यदि पिछली सदियों में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रहा तो वर्तमान समय को अंतर्राष्ट्रीयता का युग कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राज्यों व राष्ट्रीयता की भावना के उदय ने जिस प्रकार राज्य की असीमित संप्रभुता का विकास किया, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीयवादी भावना के विकास ने प्रभुता के बहुलवादी विचार को प्रोत्साहित किया। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना के विकास के कारण ही यह विचार बल ग्रहण कर गया कि संपूर्ण मानवता के हित को दृष्टि में रखकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया जाना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रवादियों के इस प्रतिपादन से राज्य संप्रभुता की महत्ता कम हुई और बहुलवादी विचार को प्रोत्साहन मिला। छठा, विधि शास्त्री तत्वों का विकास। आधुनिक काल में अनेक क्षेत्र में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि विधि राज्य का आदेश मात्र नहीं वरन उससे ऊपर की एक वस्तु है। ये विधिवादी इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है और वह विधि निर्माण के संबंध में राज्य की प्रभुता की अनन्यता या सर्वोच्चता की बात निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। इन विचारकों में डिग्विट व केब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कानून राज्य के ऊपर की वस्तु है। विधि शास्त्रियों के इस प्रतिपादन से निश्चय ही प्रभुता की एकलवादी धारणा को धक्का लगा और बहुलवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। धार्मिक वर्गों का विकास। वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था के उत्पन्न होने से और उनके स्थान पर समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था लोकप्रिय होती जा रही है। इन समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर ऐसे श्रमिक वर्गों का गठन हो रहा है जो न केवल पूंजीपतियों वरन आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का भी विरोध करते हैं। इन श्रमिक वर्गों का अंतिम लक्ष्य तो आर्थिक क्षेत्र की समस्त शक्ति स्वयं अपने हाथों में ले लेना है। श्रमिक वर्गों के इस बढ़ते हुए महत्व के कारण भी संप्रभुता के एक तत्ववादी विचार का पतन और बहुलवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। प्रमुख बहुलवादी विचारक। उपयुक्त तत्वों से प्रभावित होकर अनेक लेखकों और विचारकों द्वारा बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसमें गिरियक, मैटलैंड, फेगिक्स, डिग्विट, क्रेब, पॉल बंकर, एडी लिंडले, डरखैम, मिस फॉलेट, अर्नेट वॉकर, जी एच कोल और हेलोडी लास्की का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप। बहुलवादी विचारक अनेक आधारों पर संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। उनके द्वारा संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित आक्षेप किए गए हैं। पहला, समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदाय को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। लॉस्की के शब्दों में, आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संज्ञ होना चाहिए। आज की स्थिति में अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही और कुछ अंशों में तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। राज्य द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाता है और अन्य समुदायों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोविनोद संबंधी जीवन के विभिन्न पक्षों के संबंध में कार्य किया जाता है तथा वर्तमान समय में सामूहिक रूप से ये सभी समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कॉल के शब्दों में सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अन्य समुदाय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इनमें अधिकांशों की उत्पत्ति राज्य के पूर्व भी हुई है। व्यवहार के अन्य समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति रखते हैं और इन समुदायों ने अनेक बार राज्य को झुकने के लिए बाध्य किया है। प्रथम महायुद्ध में वेल्स की खानों ने श्रमिकों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह अपने सशस्त्र अधिनियम वापस ले। अमेरिका के रेलवे श्रमिक संघों ने अमेरिकन सरकार को विवश कर दिया कि ऐसा कानून बनाया कि उसमें 8 घंटे से अधिक काम न लिया जा सके। उपयुक्त बातों के आधारों पर बहुलवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलवादी है और ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत आज की परिस्थितियों में कोई भी औचित्य नहीं रखता। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुसत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत अथवा यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। अरस्तु ने यद्यपि राज्य को सब सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया था, तथापि उसे कानून से उच्च नहीं समझा जाता था और तत्कालीन राज्य परंपरागत नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना भी नहीं करता था। प्राचीन भारत में धर्म का स्थान राजा की आज्ञा से ऊपर था। मध्यकालीन राज्यों पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बंधन थे। प्रभुसत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्यों के विकास के साथ हुआ। यह राजाओं के दैवी अधिकार सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले निरंकुश शासन का ही परिणाम है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है और इस सिद्धांत का अंत करके वर्तमान काल के राज्यों को प्राचीन एवं मध्यकालीन राज्यों की भांति प्रभुसत्ता से शून्य ही बना देना उचित है। तीसरा, व्यक्ति के विकास पर आधार पर आधारित। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि यह राज्य को चरमामध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है। वास्तविक स्थिति के नितांत विपरीत है। राज्य की व्यक्ति की प्रगति तथा आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति की यह विकास तथा संतुष्टि बहुमुखी होती है। ऐसी स्थिति में राज्य और किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। लॉस्की के शब्दों में, मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतकरण के प्रति सच्चा रहना है। इस प्रकार बहुलवादियों ने संप्रभुता की धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है ऐसा अपना निर्णय दिया और एकमात्र राज्य ही व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। चौथा, लोकतंत्र के आधार पर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुसत्ता संपन्न राज्य में नहीं वरन बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। वर्तमान लोकतंत्र शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा किया जाता है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है, और लोकतंत्र का उपहास। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है तथा इसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। यह केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है, जो विकेंद्रीकरण और मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों के उचित मूल्यों पर आधारित है। पांचवा, कानून के स्वरूप के आधार पर। ऑस्टिन ने कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था, और यह कहा था कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, किंतु सर हेनरी मैन, डेविड और कैब आदि ने कानून के स्वरूप की गंभीर मीमांसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि राज्य ना तो कानून का निर्माता है और ना ही उसमें उच्च सच्चे तत्व हैं। इस विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं, अपितु उनका अन्वेषक या घोषणा करने वाला ही है। दश विद्वान कैब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण माने नहीं होता कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया है। उदाहरणतः चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा ऐसा निश्चय किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। अतः राज्य को कानून का निर्माता और कानून से उच्च समझना सर्वथा भ्रांत कल्पना है, और इसके आधार पर राज्य को प्रभुसत्ता मानना यथार्थ एक सत्य नहीं है। छेवा, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना दो प्रकार से की जा सकती है। कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त बहुलवादी यह भी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत ही संघर्षों एवं युद्धों का जनक है, और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। लास्की संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत अधिक व्यावहारिक मानता है। उसके शब्दों में असीमित व अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार राजाओं के दैवी अधिकार समाप्त हो गए, वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया तो राजनीति विज्ञान के प्रति यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। साधारण भाषा में एक स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है। इस प्रकार राजनीतिक बहुलवाद वह मत है और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये समुदाय राज्य के अधीन ना होकर उसके समकक्ष होने चाहिए, और इस प्रकार समाज का संगठन प्रभुता की दृष्टि से एकात्मक ना होकर संघात्मक होना चाहिए। अन्य विचारधाराओं की भांति बहुलवाद के भी कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, राज्य केवल एक समुदाय है। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुमान से तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानवीय जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती हैं, और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है, और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रखना चाहिए। जिससे अनुसमुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का यथेष्ट विकास कर सके। इस प्रकार बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि अनुसमुदाय राज्य के ही समकक्ष हैं और राज्य के समान ही ये समुदाय भी अपने क्षेत्रों में पूर्ण शक्तिशाली होने चाहिए। लॉस्की के शब्दों में समुदाय के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति को व्यक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं मानता। मैटलैंड के अनुसार राज्य भी इन समुदायों में से एक है। दूसरा, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, वे उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फासीवादी विचारकों का यह कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। इस संबंध में मैकाइवर ने लिखा है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तार वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया है। तीसरा, बहुलवादी नियंत्रण राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक व बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। बलंटसली ने उचित ही कहा है, राज्य सर्वसत्तावान नहीं क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह अपनी प्रकृति तथा अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। इस प्रकार बहुलवाद आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुश शक्ति का विरोधी है। चौथा, बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य के स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। इस संबंध में फ्रांसीसी विचारक डिगविट और डच विचारक क्रैव के अनुसार उल्लेखनीय है। डिगविट के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र उसमें श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि के बिना सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं। राज्य का व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता। कैब ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। कैब एकमात्र विधि की ही संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। यह विधि ही राज्य को संगठित करती है, न कि राज्य विधि को। कैब के शब्दों में राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इस प्रकार डिगविट और कैब जैसे बहुलवादी राजसत्ता से ऊपर विधि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। पांचवा, बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवाद आदर्शवाद दर्शन की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करता, वरन यह विकेंद्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और इन स्थानीय समस्याओं का ध्यान शक्ति के केंद्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाए। इस प्रकार का संघात्मक सामाजिक संगठन ही मानवीय जीवन की बहिर्मुखी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। 6. बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु अराजकतावाद या साम्यवाद की भांति वे उसकी समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं। राज्य का अंत करने के स्थान पर वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कौरी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्वरूप तथा महत्व वैसा ही रहेगा जैसा कि अन्य संघ तथा संस्थाओं का। बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार है, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र तथा निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं जिसका प्रतिपादन एक तत्ववादी विचारकों के द्वारा किया गया है। राज्य के संबंध में इस बहुलवादी दृष्टिकोण के कारण ही कहा जाता है कि बहुलवादी एक ओर अराजकता तथा दूसरी ओर अद्वैतवाद इन दोनों के बीच मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है। 7. बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। बहुलवाद राज्य का रूप में विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता है। आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में है। वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो, प्रभुसत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं। 8. बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवादी विचारक GDH कोल प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थक है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व की वही पद्धति उचित कही जा सकती है जिसका आधार व्यवसाय हो। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाला वकील अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता जितना कि दूर स्थित क्षेत्र का निवासी एक कृषक जो उसकी कठिनाइयों को समझता है। इसी कारण बहुलवादियों के अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित किए जाने चाहिए। कोल तो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का इस सीमा तक समर्थन है कि वह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उपभोक्ता तथा उत्पादक संघों में विभाजित करने का विचार व्यक्त करता है। इस सब के अतिरिक्त बहुलवाद व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है और यह समान इच्छा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। बहुलवाद की आलोचना आलोचकों द्वारा बहुलवाद की कई दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूपों में से प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाए और उन्हें संप्रभुता का अनुपातिक आधार समर्पित कर दिया जाए तो समाज में एक कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुलवादी विचारक भी इस तथ्य से परिचित हैं। इसी कारण संप्रभुता समुदायों में विभाजन करने के बाद भी बहुलवाद राज्य को समाज के विभिन्न समुदायों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु राज्य के द्वारा उस समय तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त न हो। बहुलवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि संप्रभुता का अनेक समुदायों में विभाजन उसे नष्ट कर देगा। विभिन्न समुदायों में समन्वय और संतुलन स्थापित करने का कार्य कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही कर सकता है जिन्हें स्वीकार करने के लिए बहुलवादी तैयार नहीं है। यदि राज्य को विभिन्न समुदायों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना है तो उसे संप्रभुता प्रदान करना आवश्यक हो जाता है, और यदि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार संप्रभुता का विभाजन कर दिया जाए तो उसका परिणाम अराजकता की स्थिति होगी। गिलक्राइस्ट का कथन है कि यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो इसका अर्थ होगा समाज का विघटन और शांति एवं व्यवस्था के स्थान पर विविध समुदायों द्वारा अपनी अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष। दूसरा, बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। यह समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से सर्वथा पृथक होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिसका कि एक दूसरे के साथ कोई संबंध ना हो। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता की स्थापना नहीं होती तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाएगा जिसमें मानवीय प्रगति लगभग असंभव हो जाएगी। आलोचकों के अनुसार यदि हम बहुलवादियों के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद की सह प्रभुत्व की धारणा को स्वीकार कर लें तो स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप में अंतर्निहित संघर्ष को हम दूर नहीं कर सकते। अतः बहुलवादियों का यह समझना असत्य है कि प्रत्येक समुदाय बिना किसी संघर्ष के साधुवत रूप में अपने कर्तव्यों को निभाता रहेगा। तीसरा, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है। बहुलवादी विचारधारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा के समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का नहीं मान लिया गया है। प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक भारी भूल है। वास्तव में राज्य संस्था के अपने अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। प्रोफेसर गार्नर के शब्दों में विभिन्न श्रेणियों व वर्गों की एक और दूसरे से प्रतियोगिता करने वाली समुदायों को उचित मर्यादा में रहने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। उसके परस्पर विरोधी हितों को निपटारा करने और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य एक निर्णायक कार्य करता है। चौथा, बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवाद शत्रु पर आक्रमण करता है। बहुलवाद की आलोचना का एक आधार यह भी है कि बहुलवाद जिस निरंकुश प्रभु सत्ता पर आक्रमण करता है, उसका प्रतिपादन हीगल को छोड़कर राज्यसत्ता के अन्य किसी भी समर्थक द्वारा नहीं किया गया। बोंदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन आदि सभी विचारक राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक, नैतिक या व्यवहारिक कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य ही स्वीकार करते हैं। कोकर के अनुसार इसमें से किसी भी लेखक का यह दावा नहीं था कि प्रभुसत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना, उसकी आलोचना करना तथा विरोध करना असमय, अनैतिक, तर्कहीन, असामाजिक तथा अव्यवहारिक है। उनके कथन का सारांश केवल यही है कि संप्रभुता अपने सदृश अन्य किसी शक्ति का अस्तित्व सहन नहीं कर सकता और यह एक अकाट्य सत्य है। इस प्रसंग में डॉक्टर आशीर्वादम ने लिखा है कि बहुलवादी जिस अद्वैतवादी शत्रु पर प्रहार करते हैं बहुत कुछ सीमा तक यह एक कल्पना मात्र वाली ही जीव है। पांचवा, बहुलवाद अंतर्विरोधी से भरा है। बहुलवाद के विरुद्ध एक गंभीर बात यह है कि बहुलवादी विचारधारा अंतर्विरोधी से भरी पड़ी है। बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करके उसके अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किंतु जब वे व्यवहार पर आते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को संप्रभु बनाए बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार वे परोक्ष रूप में राज्य के संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। यह बात सभी बहुलवादी विचारकों में देखी जा सकती है। गिरियक ने राज्य की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी इच्छा संपूर्ण जनहित का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से अपनी स्थिति की उच्चतता के कारण भिन्न है। बॉर्कर तथा लॉस्की भी यह मानते हैं कि समूहों का संगठन राज्य द्वारा ही निर्धारित होगा। बॉर्कर ने कहा है कि राज्य को जीवन की एक सामान्य तथा सर्वांग पूर्ण योजना के रूप में आवश्यक रूप से समुदायों के साथ अपने दूसरे समुदायों के तथा समुदायों के अपने दूसरे सदस्यों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लॉस्की ने कहा है, कानूनी दृष्टि से कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा अंग होता है जिसकी सत्ता असीम होती है और विभिन्न संस्थाओं में सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। मिस फॉलेट राज्य को एक तत्व का केंद्र मानती हैं। पॉल पॉकेट ने राज्य को राष्ट्रीय एकता तथा सामान्य हितों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना है। फिगिस का भी कथन है कि राज्य समाजों का समाज है और उसे समन्वय और एकीकरण की एजेंसी के रूप में विशिष्ट कार्य तथा उच्च सत्ता प्राप्त है। राज्य की दमनकारी सत्ता अन्य समुदायों का नियमन करने और यह देखने के लिए आवश्यक है कि कोई समुदाय न्याय की सीमा से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार बहुलवादी विचारधारा अंतर्विरोधी से पूर्ण है और बहुलवादियों की इस यह कहकर आलोचना की जाती है कि वे संप्रभुता को अपने सामने द्वार से बाहर निकालकर पीछे के द्वार से वापस ले आते हैं। इस संबंध में कोकर लिखते हैं, यह बड़ा मनोरंजक अंतर्विरोध है। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वे बड़े जोश के साथ प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं और उसे राजनीति की शब्दावली तक से निकाल देना चाहते हैं। दूसरी ओर जब वे राज्य के वास्तविक संगठन का वर्णन करते हैं तो उन्हें विवश होकर राज्य की सर्वोपरि स्थिति और प्रभुसत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। बहुलवादियों की यह भ्रांति है कि अन्य समुदायों पर से राज्य का नियंत्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण उपलब्ध होगा। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। जो लोग समुदायों की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य से भी आगे बढ़ सकते हैं। मध्ययुग में चर्च ने अपने से भिन्न मत रखने वाले व्यक्तियों का भीषण दमन किया था और ब्रेनो तथा गैलीलियो को अपने ही देशवासियों के हाथों भीषण यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। कई परिस्थितियों में इस समुदायों को अपने सदस्यों पर नियंत्रण वर्तमान राज्य की अपेक्षा अधिक कठोर व अत्याचारपूर्ण हो सकता है। इस संबंध में जीर्मन हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, वे साधारण यह भूल रहे हैं कि पड़ोसियों के अत्याचार से अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकता। समुदाय जितना छोटा होगा, आपके जीवन और कार्यों पर उतना ही कठोर नियंत्रण होगा। इस संबंध में WY द्वारा राजनीति में व्यवहारिक विलप्पल में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण विचारणीय है। उन्होंने कहा कि बहुलवाद समाज में राज्य रूपी दानव का स्थान समुदाय रूपी दानव ले लेंगे। समुदायगत जीवन में कार्यकुशलता तथा समृद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि भले ही हो, परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि इस प्रकार की व्यवस्था से व्यक्तित्व की भी रक्षा संभव हो सकेगी। 7. राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता। आलोचकों द्वारा लिंडसले, वॉरकर और अन्य बहुलवादियों के इस कथन की कटु आलोचना की गई है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है। लिंडसले का विचार है कि राज्य ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता अनिवार्य है और जिसके पास दंड प्रदान करने की शक्ति है। इस प्रकार लिंडसले राज्य में उन गुणों को तो मानता है जो संप्रभुता के लक्षण हैं, किंतु राज्य को संप्रभु शक्ति का प्रतीक नहीं मानता। वास्तव में यह दृष्टिकोण विवेकपूर्ण नहीं है। राज्य और अन्य समुदायों की स्थिति में आधारभूत अंतर है। जबकि अन्य समुदायों का संबंध मनुष्य के किसी भी विशेष हित के साथ होता है, राज्य का संबंध उनमें सर्वमान्य या व्यापक हितों के साथ होता है। इसी कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई समुदाय मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक न होने का दावा नहीं कर सकता। इन संबंध में बहुलवादी विचारक मिस फॉलेट ने लिखा है कि राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है और मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। बहुलवाद देशभक्ति विरोधी है। प्रभुसत्ता तथा राज्य के महत्व को कम करने तथा अपनी विचारधारा में अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जिसे उचित और व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। राज्य सत्ता के विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए और चाहे अंतर्राष्ट्रीय विचारों का कितना ही महत्व माना जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में राज्य में देशभक्ति का अपना स्थान और महत्व है। इसी सदी के 2 विश्व युद्धों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि देशभक्ति की भावना इस समय तक भी अजय है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रेम के इंद्रजाल से फंसकर देशभक्ति का विरोध तथा बहुलवाद की एक बड़ी भूल है। 9. बहुलवाद का कानूनी संबंध विचार गलत है। बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती है कि डिगबिट और कैब जैसे बहुलवादी दार्शनिकों का कानून संबंधी विचार असत्य है। वे दार्शनिक कानून को राज्य के सत्ता से उच्च मानना सही नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य का आदेश मात्र होने से कोई नियम कानून के रूप में मान्य नहीं होता, किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज में चाहे कितना भी मान्य क्यों ना हो, राजकीय स्वीकृति के अभाव में उसे कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार कानून को संप्रभु सत्ता की आज्ञा कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता का विरोधी उचित नहीं। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादियों द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध भी उचित नहीं कहा जा सकता है। यह सही है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय आचार व्यवहार और कानून का आदर करना चाहिए, लेकिन वैधानिक दृष्टि से राज्य इन सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि जनमत अथवा नैतिकता के दबाव में राज्य का पालन करता है तो उसकी संप्रभुता समाप्त नहीं हो जाती। वास्तविकता यह है कि सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की बाहरी संप्रभुता पूर्ण है यदि व्यवहार में उस पर प्रतिबंध है। बहुलवाद का महत्व राजसत्ता के खंडित स्वरूप तथा संघों के महत्व का एक अतिरिक्त रंजित चित्र प्रस्तुत करने पर भी बहुलवादी दर्शन में सत्य का बहुत कुछ अंश है। गर्टल के शब्दों में बहुलवाद कठोर व सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। बहुलवाद अराजकता संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। इन समुदायों के उचित कार्य क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, वरन इन समुदायों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद के इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। उचित रूप में बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी, वरन राज्य की कार्य क्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। मिस फॉलेट ने बहुलवाद के गुणों के संबंध में लिखा है, बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं, वे संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें यह मान्यता प्रदान करते हैं वह अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में स्वायत्तता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थानीय जीवन को पुनः स्थापित करने के पक्ष में हैं। निष्कर्ष: प्रभुसत्ता राज्य के विरुद्ध एक सामाजिक सामूहिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैरियम और बॉक्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन रिसेंट टाइम में लिखा है, बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग किया गया है और न ही इसका त्याग किया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर आशीवादम ने बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए लिखा है कि एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो संप्रभुता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है और जिसकी कमियों को पूरा करता है, बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पर जब वह संप्रभुता के सिद्धांत को ही उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है तब यदि व्यर्थ नहीं हो तो खतरनाक अवश्य हो सकता है। वास्तव में बहुलवादी आलोचना राज्य को संवेकारी रूप में भी आलोचना होने की अपेक्षा राज्य के वर्तमान सामाजिक ढांचे की आलोचना अधिक है। ऐसी स्थिति में जॉर्ज सेवाइन ने इन शब्दों का प्रयोग उचित ही है कि मैं यथासंभव एकलवादी बनने का विचार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु यह आवश्यक है कि बहुलवादी बनने को तैयार हूँ।